خصايا عبادة مقدس تاري خصايا تكبير الهرب الكرمايا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
برنامج کے تعارفی کلمات کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب سے کہ آپ آئیں اور اس پروگرام کے تعارفی جو کلمات ہیں وعدہ کریں جناب پروفیسر ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب.
عزیزان گرامی, بہت زیادہ کوئی میں نے تقریر نہیں کرنی, صرف آج کا ایک اس کا ابتدائیہ پیش کرنا ہے, اس کے بعد ہمارے معزز مہمانان گرامی آپ کے سامنے بات کریں گے اور مزید بھی ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائیں گے, وہ بھی اس کانفرنس کا حصہ بنیں گے. مسئلہ فلسطین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ مسئلہ فلسطین کی ابتدا کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. میں یہاں پر نہ تو کوئی تاریخ بیان کروں گا نہ کوئی اور بات کروں گا, کیونکہ ایک بڑی طویل یہ داستان ہے. غاصب صہیونی حکومت کو 1948 میں بنا دیا, بنانے والے برطانیہ, امریکہ, فرانس, یورپی حکومتیں, جنہوں نے اس پورے ریجن میں ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے اندر اور خاص طور پہ افریقہ کو کنٹرول کرنے کے لیے, کالونیل سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا کالونیل سسٹم بنایا, جس کو سیٹلرز کالونیل سسٹم کہا جاتا ہے, جنہوں نے آ کر باہر سے آ کر فلسطین کی سرزمین پہ وہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر ایک ناجائز ریاست اسرائیل بنا دی, اور نہ صرف یہ کہ ایک ناجائز ریاست بنی, اس ریاست نے وہاں کے مقامی باشندوں کو اپنے ہی وطن سے باہر نکال دیا, اور کئی لاکھ فلسطینی ایک ہی دن میں اپنے ہی گھر سے جلا وطن کر دیے گئے, جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ اس وقت جلا وطن ہیں اور اپنے گھر واپس جانے کا حق مانگ رہے ہیں. اس طرح کی کانفرنسز کرنے کا ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے حق کی بات کریں اور بتائیں دنیا کے سامنے, یہ ایک مقدمہ رکھیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. ایک یہ اس کا خلاصہ ہے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ظلم و ستم کی جو شروعات ہے وہ اعلان بیلفور سے شروع ہوئی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے کہ جس نے مسئلہ فلسطین کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے. صہیونزم نہ صرف فلسطین پر قابض ہوئی بلکہ صہیونیوں نے اس سے آگے کی پلاننگ کی اور گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کی, اور اس گریٹر اسرائیل کے لیے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں وہ جنگیں لڑی. جنگوں کے علاوہ حالیہ جو واقعات ہوئے جو انہوں نے سیریا, عراق اور مختلف جگہوں پر کیے, داعش کو بنایا اور اس طرح کے بہت سارے ان کے اقدامات ہیں, جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس پورے ریجن کو توڑنا چاہتے تھے, پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے, اور چاہتے تھے کہ گریٹر اسرائیل کے جو منصوبے 1967, 73, 78 میں اور 2000 میں جو خراب ہو گئے, جو آگے نہیں بڑھ پائے, جس کو ریزسٹنس نے روک دیا, اس کو یہ آگے بڑھائیں اور ان علاقوں تک اپنا باقاعدہ کنٹرول حاصل کریں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بری طرح سے وہ ناکام ہوئے, اور جس اسرائیل کے بارے میں ہمیں پاکستان میں یہ درس دیا جاتا تھا کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر قوت ہے, اسرائیل ایک بڑی طاقتور چیز ہے, بڑی ٹیکنالوجی رکھتا ہے, بڑی چیزیں رکھتا ہے, آج اس اسرائیل کی حالت آپ دیکھیں تو اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ ایک دیوار کے بعد دوسری دیواریں کھڑی کر چکا ہے, وہ محدود ہو رہا ہے, وہ ایکسپینڈ ہونے کا فارمولا لے کر آیا تھا 1948 میں, آج وہ سکڑ رہا ہے. جس جنگ کو وہ پھیلانا چاہتا تھا خطے میں, آج وہ جنگ اس کے بارڈروں پہ پہنچ گئی ہے. جولان کی پہاڑیاں اس وقت جنگ کا میدان بنی ہوئی ہیں, لبنان کے شیوا فارمز اس وقت جنگ کا میدان ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو کل ہمارے لبنانی بھائیوں نے جب مسجد اقصی پہ حملہ ہوا, ہمارے لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا, آپ نے وہ مناظر یقیناً سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں, تو لبنانیوں نے اس کا رسپانس سب سے پہلے دیا. وہاں سے انہوں نے چند میزائل فائر کیے جو غاصب صہیونی ریاست کی طرف فائر کیے, اور یہ پیغام دیا ان کو, کہا کہ اگر تم مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے مسلمان خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے, تمہیں رسپانس نہیں دیں گے, بلکہ ہم تمہارے ساتھ ایک مسلح رسپونڈ بھی کریں گے تمہیں, اور جہاں تک ممکن ہوگا ہم تمہارا راستہ روکیں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ وہ لبنان سے ہوئی ہے کل. لہذا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت طاقتور ہے, وہ اس وقت بہت ہی کمزور ہے. اس کی اپنی جو صورتحال ہے, اگر آپ خبریں دیکھ رہے ہوں یا آپ کو یہ کوئی سورسز سے چیزیں مل رہی ہوں, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت خود غاصب صہیونی حکومت بامقابلہ غاصب صہیونی جو آبادکار ہیں, جو امریکہ سے آ کر آباد ہوئے تھے, یورپ سے آ کر آباد ہوئے تھے, آسٹریلیا سے آئے تھے, رشیا سے آئے تھے, مختلف دنیا کے ملکوں سے آئے تھے, یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت. مقبوضہ بیت المقدس اس وقت جنگ کا میدان ہے, اندرونی خلفشار ہے, اور اسرائیلی جو غاصب ریاست ہے اس وقت تاریخ کے بدترین دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, کولیپس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں 3 سال کے اندر 6 حکومتیں بنی ہیں. 3 سال کے اندر 6 حکومتیں بننا, اس کا مطلب کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی وہاں پر استحکام نہیں ہے. وہ بدترین اس وقت मुसीबत का शिकार हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जो बहुत अहम है, जो हमसे रिलेटेड है, मैंने कहा कि बहुत सारी बातें मैंने स्किप की हैं, टाइम क्योंकि कम है, मैं चाहूँगा कि हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी उस पर फिर बात करेंगे, सिर्फ मैंने पॉइंट छोड़ दिया है। ऐसे हालात में कि इसराइल डूब रहा है, दूसरी तरफ जो अरब रियासतें हैं, हमारे अरब भाई हैं, वो इसराइल के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं, वो ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इसराइल से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, सफारत करते हैं, उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, ठीक है आप कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि कर क्या रहे हैं आप। वो इसराइल जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप उसको ऑक्सीजन फराहम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं रुक रही, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारे सहाफ़ी भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इनकी आवाज़ बड़ी पावरफुल आवाज़ है। अभी हम जो पाकिस्तान में हैं, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा मसला हमें यही दरकार है कि जहाँ पर ये बात की जा रही है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए जाएँ, इसराइल के साथ दोस्ती कर ली जाए और इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए या इसराइल के बारे में कोई बातचीत की जाए, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ा शोर मचा हुआ है। आप लोग साफ़ी भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मौजूद सियासतदान उलमाए कराम हैं, पिछले कुछ सालों से बतदरीज कुछ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, कभी कोई साफियों का डेलीगेशन चला जाता है, कभी किसी स्कूल में कराची के शहर कोरंगी में, वहाँ पर किसी स्कूल के अंदर इसराइल और इंडिया के परचम बच्चों को थमा दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इससे बढ़कर आप देखें तो एक NGO है यहाँ पर जिसको हमारे मसीही बरादरी के कुछ लोग चलाते हैं, वो अपने मोनोग्राम के अंदर तंजीम के वो इसराइल का झंडा पब्लिश करते हैं। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कायदे आज़म ने क्या कहा? कायदे आज़म ने फरमाया था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, पाकिस्तान इसे तस्लीम नहीं करेगा। अब कायदे आज़म की बात निकली है, मैं नौजवान दोस्तों के लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बाकी तो सब लोग जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने 1920 से बर्रे सगीर के अंदर फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आवाज़ उठाई और उस ज़माने से आपने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना शुरू की और कहा बर्रे सगीर के मुसलमानों को कि ये जो यहूदी रियासत जो सहूनियों को दुनिया से लाकर बसाने की कोशिश की जा रही है, ये हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे, मुदाहमत करेंगे। और यही वजह है कि बतदरीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हर इजलास में कायदे आज़म फ़लस्तीन के मामले को एजेंडे पर टॉप प्रायोरिटी पर रखते थे। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आप देखिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को जिस दिन करारदादे लाहौर पेश हुई, जिसको करारदादे पाकिस्तान भी कहा जाता है, एक करारदाद नहीं आई उस दिन, चार करारदादें आईं। पहली करारदाद पाकिस्तान से मुतालिक थी जिसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उन पर मबनी एक जो है वो अलग रियासत का मुतालबा है। दूसरी करारदाद क्या है, फ़ौरन बाद कहा गया है कि बरसगीर के मुसलमान फ़लस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे और फ़लस्तीनियों की हिमायत में अगर पुरतशद्दुद रास्ता भी इख्तियार करना पड़ा तो हम उससे बिल्कुल अपना हाथ नहीं खींचेंगे। इससे आगे चलिए फिर 1947 में पाकिस्तान बन जाता है, हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब जब अमरीका के दौरे पर जाते हैं, वहाँ पर एक सहूनी लॉबी के लोग उनसे मिलते हैं, अमरीका उनको कहता है कि भाई इनके साथ बातचीत कर लें, पाकिस्तान बन गया है, ये आगे इनका जो इनका इसराइल है आप इनके साथ जो है वो ताल्लुकात करें, कोई तिजारत करें, मामलात चलाएं। तो लियाकत अली ख़ान साहब उस ज़माने में फरमाते हैं, कहते हैं कि जेंटलमैन आवर सोल इज़ नॉट फॉर सेल, कि हम कोई बेचने के लिए नहीं है यहाँ पर, ये हमारे कायदीन हैं, ये हमारे फाउंडर हैं, आबाव अजदाद हैं जो हमें ये दर्स देकर गए। इसी तरह अगर आप आगे आइए, हमारा एक तारीखी रिश्ता है पाकिस्तान का फ़लस्तीन के साथ। यहाँ पर मैं ज़रूर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को यानी ट्रिब्यूट पेश करूँगा, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने जब 1973 जब अरब इसराइल वॉर हुई तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ से ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म को भेजा पाकिस्तान एयरफोर्स के, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की कमांड करके इसराइल के चार जहाज़ उन्होंने मार गिराए। ना सिर्फ यहाँ पर बात रुकी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हाफिज़ुल असद से कहा कि अगर शाम की सिक्योरिटी को ख़तरा हुआ तो हम पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड भेजेंगे। ये है पाकिस्तान का तारीखी रिश्ता, एक अकीदती रिश्ता फ़लस्तीन के साथ। इसी तरह जनरल अयूब खान के ज़माने में भी हमें मिलता है कि 1967 में जब अरब इसराइल वॉर पहली मरतबा हुई तो उस वक्त भी हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स वहाँ पर गई और ग्रुप कैप्टन हमारे अब्दुल सत्तार उन्होंने वहाँ पर जाके जॉर्डन की तरफ से जंगी जहाज़ उड़ाए और इसराइल से मुकाबला किया। ये एक बहुत लंबी दास्तान है जो बयान की जा सकती है, लेकिन ये मोटे मोटे वाक़यात हैं जो यहाँ नौजवान बैठे हैं, साफ़ी बैठे हैं, मैं उनके लिए बयान कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो वाक़या हुआ है, एक यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी हम कोई यहूदी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी ईसाई मजहब के किसी के, ये सिख भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी हमारे हिंदू भाई यहाँ पर आएंगे, हमने बिशप सादिक डैनियल साहब को यहाँ बुलाया हुआ है। हमें ये ब्लेम दिया जाता है कि मुसलमान जो है वो एंटी सेमिटिक हैं, यहूदियत के ख़िलाफ़ हैं, यहूद मजहब के, नहीं, हम मजहब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। आपने इसराइल जो गलत बनाया है, किसी के घर में घुसकर बनाया है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम इस बात के कायल नहीं हैं कि आप किसी के घर में घुसें और उसके घर पर कब्ज़ा कर लें, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जब हम इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम यहूदी मजहब के ख़िलाफ़ हैं। हम हर उस मजहब का एहतराम करते हैं जिसका हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है बतौर मुसलमान, कि हर मजहब का आपने एहतराम करना है, किसी के साथ आपने ज़्यादती नहीं करनी है उस वक्त तक के जब तक वो आपसे जंग के मैदान में ना आ जाएं, तब तक। तो हम उस फार्मूले पर कायम हैं, यही हमारे पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि जब तक यहूदियों ने आपके साथ जंग नहीं की, आपने उनके साथ जंग नहीं की, जब उन्होंने जंग की तो आपने उनके साथ जंग की। तो हम भी इसी बात को कहते हैं। अब आप देखिए, ये मीडिया के भाई इसको वो नोट कर लें कि एक शहरी अगर वो यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान का एक ही शहरी है, वो किस तरह से इसराइल चला जाता है, वहाँ जाकर पाकिस्तानी पासपोर्ट तल अबीब के एयरपोर्ट पे लहराता है, पाकिस्तान की तौहीन करता है, पूरे आईने पाकिस्तान को वो अपने जूते की नोक पे रख देता है वहाँ जाकर। हमारा कायदे आज़म क्या कहते हैं, हमारा आईने पाकिस्तान क्या कहता है, वो वहाँ जाकर कहता है। फिर वो पाकिस्तान आता है वापस, वो अपने ही तौर पर एक वो मफरूज़ा वो बना लेता है कि जी मैंने पाकिस्तान इसराइल की तजारत शुरू कर दी। भाई तुम कौन होते हो, क्या तुम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के तर्जुमान हो, क्या एक शहरी क्या 22 करोड़ पाकिस्तानियों का तर्जुमान है? और फिर उस पर हम ये कहते हैं कि आप एक ऐसा कोई कानून होना चाहिए पाकिस्तान में, जब आईन इसकी इजाज़त नहीं देता, जब एक चीज़ डिक्लेयर है, कायदे आज़म की पॉलिसी डिक्लेयर है। आज जो मौजूदीन भी बैठे हैं, ये बात करने का मकसद यहाँ ये है कि हम इसकी एक इसका कोई पेश खेमा बनाएं कि कोई भी शख्स हो अगर वो इस तरह से अपने अकलियती मजहब की आड़ लेकर पाकिस्तान की तौहीन करे तो हमें कम से कम उसको पूछना चाहिए, हमें कम से कम उससे बात करनी चाहिए कि भाई ये तुम क्यों इस तरह करते हो, पाकिस्तान को क्यों बदनाम करना चाहते हो, कौन से एजेंडे पे काम करना चाहते हो, क्यों पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हो। उनके इस इकदाम से आप देखें पाकिस्तान में इंतशार फैलता, पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि एक लोगों का सेंटिमेंट जो है वो मजरू होता है। तो इस तरह के वाक़यात पे दर पे जो है पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं और ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला ये मुसलसल जारी है। और इसके अंदर बहुत सारे हमने देखा है कि कुछ सहाफ़ी भाइयों को भी हमारे जो है वो इसराइल यात्रा करवाई गई है, कुछ उलमाए कराम हैं, उलमाए कराम के लिबादे में हैं। मैं उलमाए कराम नहीं कहता क्योंकि उलमाए कराम तो माशाल्लाह उनका बड़ा एक मकाम है माशरे में, वो बड़ी खिदमत करते हैं, उनके लिबादे में कुछ लोग हैं, यहाँ कराची में मौजूद हैं, लाहौर के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद, मैं उनको जानता हूँ सबको, वो भी मुझे जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है, वो जा चुके हैं वहाँ पर। अभी वो कहते हैं जी यहाँ पर इसराइल की बात करें, भाई क्यों करें बात, इसराइल के पास आखिर है क्या? वो इसराइल जो फ़लस्तीनियों के सामने नहीं टिक सकता, वो इसराइल जो फैलना चाहता था वो सुगड़ रहा है, हमें उसका दर्स पढ़ाया जा रहा है कि हम उससे दोस्ती कर लें। हमारी दोस्ती एक सात समंदर पार होनी चाहिए भाई, पहले अपने पड़ोसियों से तो दोस्ती अच्छी कर लो, पहले अपने चारों बॉर्डर्स के ऊपर तो दोस्ती अच्छी कर लो, ये दोस्ती होगी, ये हमारे हमसाए हैं, ये हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगे। तो हम ये इसराइल के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ये कोई मेरी ज़ाती बात नहीं है, मैंने सिर्फ वही बात की है जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें सिखाई है, जो अल्लामा इकबाल की अगर आप शायरी पढ़ें तो वो हमें बताती है कि फ़लस्तीन से हमारा क्या रिश्ता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने अपनी वफात से कबल ये वसीयत फरमाई कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र बैतुल मक़दस के अंदर बनाना, उनकी कब्र आज भी वहाँ पर, वो मदफून है वहाँ पर, उनकी कब्र वहाँ पर है, ये हमारा एक रिश्ता है। और फिर मैंने आपको बताया कि बतदरीज हमारे सियासतदानों का जो रिश्ता रहा है हुकूमतों का, जैसे वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हमने बात की, जनरल अयूब की इस तरह, और जो लोग हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। ये आजकल के ज़माने में हम ये देख रहे हैं कि एक हवा चल पड़ी है, तो हमें इसको रोकना है। मैं तमाम अपने इन सियासी ज़ोमा से, तुलबा बिरादरी यहाँ पर है, साफ़ी बिरादरी है, उसातज़ा मौजूद हैं, स्कॉलर्स हैं, मैं इन सब से यही मुल्तमिस हूँ कि हम इस तरह की भी जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसका मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करें और इस तरह की जो साजिशें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका मुकाबला करें। आखिरी बात यह है कि इस वक्त तीन दिन पहले क़िबला अव्वल के अंदर गासिब सहूनियों ने हमला किया है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर, उन्होंने तशद्दुद किया है। आप देखिए मस्जिद के अंदर घुसकर, अगर आपने वो मनाजिर देखे नहीं देखे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, उन मनाजिर के अंदर मस्जिद में घुसकर उनके चेहरों पे नकाब डालकर उनको बदतरीन तशद्दुद करके मारा गया है। नमाज पढ़ते हुए लोगों को नमाज तोड़कर हटा दिया गया उनको, दुनिया खामोश है। अक्वामे मुत्तहिदा कहती है कि लबनान से रॉकेट फायर हुए हैं इसराइल पर, हम इसकी मुज़म्मत करते हैं, लेकिन मैंने अक्वामे मुत्तहिदा को नहीं देखा कि उसके सेक्रेटरी जनरल ने कहा हो कि ये जो इसराइल ने किया है ये नाजायज़ है, ये ज़्यादती है, ये गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड की दुनिया मज़ीद चलने वाली अब नहीं है, क्योंकि अब ये दुनिया है कि अगर आप मारोगे तो मार के आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हमारे लबनानियों ने चंद रॉकेट फायर किए हैं, पूरे का पूरा आप देखिए सिस्टम हिल गया। इसराइल की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो रिप्लाई करे, इसराइल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लबनान पे हमला कर दे। उसने दो हमले किए हैं और वो बनाना फार्म्स के ऊपर हमले किए हैं, वो मजाक बना हुआ है पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप देखें इस वक्त जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो एक मजाक बन गया है कि उन्होंने कहाँ हमला किया है, एक बनाना फार्म्स है उसके ऊपर जाके हमला कर दिया है और वहाँ पर जो है उसको कहा है कि हमने लबनान को जवाब दिया है। तो ये इस वक्त दुनिया इस तरफ है कि बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो चुका हुआ है और हम देख रहे हैं कि जो जालिम और साम्राज्य कुवतें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। और हम इसमें ये भी बात करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है वो बहुत अहम है। चाइना के साथ हमारे मामलात, रशिया के साथ, ईरान के साथ, मलाशिया के साथ, टर्की के साथ, ये वो मामलात हैं कि जो हमें एक अच्छे आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। मैं इन्हीं कलमात के साथ